أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. سامعین محترم، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور ہمارے آقا و مولا حضرت امام زمانہ کی خدمت اقدس میں مولا کائنات کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال کے جس شعر کو، بلکہ جس مقطع کو میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں علامہ اقبال نے مولا کائنات کے ذکر کو روح کی تشنگی کی سیرابی کا سبب قرار دیا ہے. واقعی طور پر انسان کی زبان میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات کی زندگی کا بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. جس رخ سے دیکھیے مولا کائنات کی سیرت، انسان کی ہدایت کے لیے ایک منارہ نور ہے. اس نشست میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اس کا موضوع ہے مولا کائنات کی زندگی سے عملی درس، ضربت سے شہادت تک. اگر ہم مولا کائنات کی زندگی کو تقسیم کرنا چاہیں مختلف ادوار کے اندر، تو پہلا دور مولا کی ولادت سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ تک کا قرار پائے گا. دوسرا دور دعوت ذوالعشیرہ میں حضور سرور کائنات سے کیے ہوئے وعدے سے لے کر ہجرت تک کا دور ہے. تیسرا دور ہجرت پیغمبر سے لے کر رسول کی وفات تک کا دور. چوتھا دور وفات رسول سے لے کر مولا کائنات کی ظاہری حکومت تک کا دور، جو 25 برس کی خاموشی اور سکوت پر مبنی ہے. پانچواں دور مولا کائنات کے ظاہری اقتدار سے لے کر 19 رمضان المبارک تک، اور آخری دور 19 رمضان سے لے کر مولا کی شہادت تک. یہ جو آخری دور ہے اس پر اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے. میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کی زندگی کا ہر لمحہ منارہ نور ہے، ہمارے لیے بے پناہ درس رکھتا ہے. لیکن یہ آخری دور جو مولا کائنات کی حیات طیبہ کا ہے، اگر اس پر صرف ہم فوکس کریں اور اس پر توجہ کریں، تو ذرا دیکھیے زندگی میں کتنے ایسے مرحلے آئے کہ جب مولا کو شہادت کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا گیا. حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، پیغمبر اکرم کی خدمت میں آ کر مولا نے مغموم لہجے میں کہا میرا بھائی جعفر شہید ہو گیا، چچا حمزہ شہید ہو گئے، یہ سب شہید ہو کر کامیابی کے راستے پر روانہ ہو گئے، نہ جانے مجھے وہ کامیابی کب نصیب ہوگی. یعنی یہ مولا کی تمنا کو اپنے الفاظ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولا تمنائیں شہادت کیا کرتے تھے. اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جس کی مولا تمنا کیا کرتے تھے، تو مولا کا عالم کیا ہے؟ اضطراب کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے. ایک خطبے کے اندر مولا خود بھی اشارہ کر چکے ہیں، معلوم کرتے ہیں اے میرے لال حسن آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے. امام حسن تاریخ بتاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں اب وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ سر اور یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی. اس کے بعد گریہ فرمانے لگتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، اس لیے کہ اس بات کا اعلان تو مولا پہلے ہی کر چکے تھے کہ فرزند ابو طالب کے لیے موت ایسی ہے मौत से ऐसे वाकिफ और आशना है कि जैसा बच्चा आगोश मादर से वाकिफ होता है। तो वो वक्त जिसकी तमन्ना किया करते थे, जिसका तस्करा किया करते थे, अब वो वक्त करीब है। तो मौला का तर्ज अमल क्या है, उससे हमारे लिए अमली दर्स क्या है? पहले तो अगर उस शब को आप मुलाहिजा करें जो आपने अपनी छोटी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के खाने अकदस में गुजारी है, तो उस शब में मौला का आलम यह था कि बार बार सहन खाना में आते थे, आसमान की तरफ नज़र करते थे और कहते थे वो वक्त अभी दूर है। यानी शौक़ शहादत, कितना इंतज़ार है मौला को मालूम है कि आज की शब या आखिरी शब है। उसके बाद जब मौला रुख्सत होने लगे, तो रुख्सत होते वक्त मशहूर रिवायात हैं जिन्हें हम मसाइब में सुनते हैं कि घर के अंदर जो बतें पली हुई थी उन्होंने दामन पकड़ लिया। तो वहाँ मौला ने पहली वसीयत फरमाई, कैसा बेहतरीन दर्स है आज ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन आपको कभी एनिमल राइट्स की बात करते हुए नज़र आते हैं, कभी हुकूक निस्वा की बात करते हुए नज़र आते हैं, मगर 1400 बरस पहले मौला ने जानवरों के हुकूक का ये पैगाम दिया कि एक मरतबा वसीयत फरमाई कि ए बेटा, जब तक इन बतों के दाना पानी का इंतज़ाम होता रहे उस वक्त तक इनको रखना, वरना इन्हें आज़ाद छोड़ देना। यानी ये पहला दर्स था हुकूक के ताल्लुक से। इसके बाद जब मौला मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं, तो अब रिवायात मिलती हैं कि मौला ने अपने कातिल को खुद बेदार किया, जो तलवार को अपने लिबास में छिपाए हुए उल्टा सोया हुआ था, उससे बेदार करते हैं, नमाज के लिए जगाते हैं। ये भी मौला की ज़िंदगी का अजीम तरीन दर्स है कि मौला बताना चाहते हैं कि अली को ये मंजूर नहीं कि कातिल भी नमाज से महरूम रह जाए। उसके बाद रिवायात बताती हैं कि मौला ने अजान खुद कही। आज अजान कहने वाले को हम कितना हकीर समझते हैं कि गोया उसकी कोई कीमत ना हो, जबकि रिवायात के अंदर है कि अगर अजान देने के अजर व सवाब का लोगों को इल्म हो जाए तो वो आग और खून के दरियाओं को उबूर करके अजान देने के लिए आए। मौला ने ये अमली दर्स दिया खुद अजान देकर, ताकि लोगों को अजमत पता चले कि मौज़िन कोई हकीर फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि इसका काम बहुत अहम है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता है। इसके बाद जब मौला के सरे अकदस पर ज़रबत लगी है, तो ज़रबत लगने के बाद जो कलेमात मौला की ज़बान अकदस से निकले वो तारीख़ की पेशानी का झूमर बने हुए हैं कि मौला ने कहा फुज तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। मौला कब कामयाब नहीं थे? आप मौलाए कायनात की ज़िंदगी के का मुतालिया करें तो हर लम्हे मौला आपको कामयाब नज़र आएंगे। मैदान जंग में कामयाब, मेहराब में कामयाब, मुसल्ले पर कामयाब, मसनद क़ज़ा पर कामयाब, हर हर लम्हे कामयाब। लेकिन आज मुकम्मल कामयाबी है, इसलिए कि शहादत एक मोमिन की तमन्ना है, एक मोमिन की दुआ है। आज वो शहादत नसीब हो गई तो मौला ने कामयाबी का ऐलान कर दिया। वो या पाको पाकीज़ा ज़िंदगी लेके आया था और पाको पाकीज़ा अपने रब की बारगाह में मैं इसे वापस लौटा रहा हूँ, ये कामयाबी का ऐलान था। इसके बाद जब इमाम हसन पहुँचते हैं, तो बावजूद इसके कि सर शिगाफ्ता है और खून ज़ख्म से निकल रहा है, इमाम कहते हैं बेटा पहले नमाज मुकम्मल कराओ। ये नमाज की अहमियत बताना था कि देखो सर पे ज़रबत खाने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि पहले नमाज मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मुझे यहाँ से ले जाया जाए। इसके बाद अगर मौला की हयात के इन लम्हात को आप देखें तो नज़र आएगा कि जब भी कोई मिलने वाला, जब भी कोई अयादत के लिए आता है, तो मौला उससे कहते हैं सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़दूनी, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ। यानी जिसने पूरी ज़िंदगी अपना कलेजा निकाल के मिंबर पर रख दिया हो और जो चाहता हो कि लोग मुझसे सवाल करें, लोग इल्म सीखें, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी इल्म की तबलीग कर रहा है। फिर वसीयत करते हैं, तो उन वसीयतों में पहली वसीयत ही है कि ऐ मेरे लाल, देखिए ये भी हो सकता था कि मौला कहते कि मैंने इसे माफ़ फरमा दिया, इससे कोई कसास ना लेना। लेकिन कसास हुक्म इस्लामी है, लिहाजा ये तो नहीं फरमाया कि कसास ना लेना, लेकिन ये कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो इसका मामला मेरे सुपुर्द होगा, लेकिन अगर मैं जहाँ बहक हो गया तो इसने मुझे एक ज़रबत लगाई है, तुम भी इसे एक ही ज़रबत लगाना। कातिल जब सामने लाया जाता है, फिर हुकूक इंसानी का अजीम दर्स है, ये अजीम मुदर्रिस है जो कभी मैदान जंग को दरसगाह बना लेता है, मकतब बना लेता है, कभी मिंबर से तबलीग की बातें इस अंदाज से करता है कि अगर तकवे की हकीकत बयान करने लगे तो सुनने वाला एक चीख मार कर इस दुनिया से चला जाए, वो आज अपने बिस्तरे मर्ग को, अपने बिस्तरे शहादत को दरसगाह बनाकर हुकूक का दर्स भी दे रहा है और इंसानियत का सबक भी फिर से दोहरा रहा है, फिर से सिखा रहा है कि एक मरतबा कातिल को लाया गया तो देखा मुश्क कसी हुई हैं, कहा हसन मेरे लाल इसकी मुश्कों को खोल दो। और उसके बाद सवाल किया, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? ये सवाल करना, ये आखिरी लम्हे में कातिल से अपने किरदार की अजमत का एतराफ़ करा लेना, ये कोई मामूली काम नहीं है कि सर झुका के कातिल खुद कहता है आप तो बेहतरीन इमाम थे, लेकिन जिसकी किस्मत में दोजख के शोले हों वो क्या कर सकता है। उसके बाद जब दूध आपके लिए लाया जाता है, अल्लाह अकबर, इस वक्त भी हुकूक इंसानी का बेहतरीन दर्स मौलाए कायनात देते हुए नज़र आते हैं कि इस तकलीफ़ में, इस तड़पते हुए, इस जहर के असर से जो खून के अंदर सरायत कर चुका है, उसके बावजूद मौला ये हुक्म देते हैं कि मेरे कातिल को भी ऐसा ही दूध का जाम या शरबत का जाम पेश किया जाए। फिर जो वसीयतें करते हैं, उन वसीयतों पर अगर आप नज़र करें तो पहली वसीयत मौला की यह है कि मैं तुम्हें तकवाए परवरदिगार की वसीयत करता हूँ। अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी मौला की आप देख जाएं, खुतबात को उठा के देखें, खतूत को देखें, शॉर्ट सेंग्स को देखें, हर हर लम्हे के ऊपर मौला दर्स देते हुए नज़र आते हैं। तकवा, देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, तकवा, बार बार तकवे की तबलीग करने वाला ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी जो पहली वसीयत करता है वो कहता है तकवा इलाही। दूसरी चीज़, दुनिया का पीछा न करना, दुनिया के पीछे न भागना। दुनिया की हकीकत मौला के कलेमात में नज़र आता है, कहते हैं खुतबे के अंदर कि अली की नज़र में ये दुनिया बकरी की नाक से बहते हुए नज़ले के गंदे पानी से भी कमतर है। आज उसी वसीयत को दोहरा रहे हैं, उसी बात को कि दुनिया के पीछे न दौड़ना। फिर क्या अजीम दर्स है, यतीमों पर रहम करना, इसलिए कि मैंने रसूल अकरम से यह बात सुनी है कि यतीमों का ख्याल करने वाला, यतीमों का हक अदा करने वाला उसी तरह जन्नत में जाएगा जिस तरह यतीमों का हक खाने वाला दोजख में जाएगा। फिर कहते हैं मजलूमों के हामी बनना और जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाना। अजीज़ों, ये बड़ी अहम बात है। फ़मन यकफ़ुर बिताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल्उरवतिल वुस्का, उरवतिल वुस्का तक वही पहुँचता है कि जो पहले तागूत के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, मजलूम का हामी बन जाए। मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी इसी से इबारत है। वही दर्स आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाली नस्लों को पता चल जाए। उसके बाद कहते हैं कुरान को तनहा ना छोड़ना। अल्लाह अकबर, मौला का इश्क़ कुरान के फरमा रहे हैं कुरान को तनहा ना छोड़ना। उसके बाद कहते हैं आखिरत के मुसाफिर बनना। और फिर अजीम दर्स है, हर लफ्ज़, पूरी पूरी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाए तो इसकी तशरीह का हक अदा नहीं हो सकता। इमाम फरमाते हैं खुदा की राह में मलामत करने वालों की परवाह न करना। अजीज़ो, आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हम कोई छोटा सा भी नेक काम करना चाहते हैं तो हमारी तमन्ना होती है लोग अप्रिशिएट करें, हमारी इज्जत करें, हमें कद्र की निगाह से देखा जाए। जबकि मामला इसके बरक्स होता है कि जब भी आप नेकी की राह पर चलेंगे, जब भी आप फलाह व बहबूद के लिए कोई काम करेंगे तो खुदा की राह पर चलने वाले अक्सर तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं। अक्सर ये जुमले आ जाते हैं, अरे ये कहाँ से चैरिटी करेंगे, ये तो कहीं से मिल रहा है, 90% खुद खा गए, 10% का लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसको मौला फरमा रहे हैं, इस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि खुदा की राह पर चलने वाले अक्सर तनकीद का निशाना बनाए जाएंगे, इसलिए कि अक्सरियत सपोर्ट करने वाली नहीं होती, लेकिन अगर तुम हक की राह पर हो तो इसके परवाह न करना। फिर कहते हैं पड़ोसी का ख्याल रखना, आमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से गाफिल ना होना, नमाज की हिफाजत करना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। वो मुआशरा मुर्दा मुआशरा हो जाता है कि जिसके अंदर अम्र व नहीं का ख्याल ना किया जाए। मौला चाहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी जिस अंदाज से गुजरी है, मेरे चाहने वाले भी उसी अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा ये वसीयतें बज़ाहिर इमाम हसन से की हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक इनायत फरमाए कि हम इमाम की वसीयतों पर अमल कर सकें और इमाम की राह पर चल सकें और वाकई तौर पर एक अच्छे और सच्चे शिया अली कहलाए जा सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।